ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज की मुख्य समाचार शीर्षक। स्थायी कमेटी की बैठक मार्चशीर्ष 29 को बुलाने का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठक ने किया निर्णय। अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने भ्रष्टाचार नियंत्रण संबंधी अपनी 5 वर्षीय रणनीतिक योजना को किया सार्वजनिक। और न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी के फटने से 5 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की सचिवालय बैठक ने पार्टी की स्थायी कमेटी की बैठक को मार्चशीर्ष 29 के दिन बुलाने का निर्णय लिया है। पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में आज हुई बैठक ने मार्चशीर्ष 27 को सचिवालय और 29 गते स्थायी कमेटी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बैठक में पार्टी का विधान संशोधन करने और इसके लिए आगामी स्थायी कमेटी बैठक में प्रस्ताव पेश करने का निर्णय भी लिया है। साथ ही उपनिर्वाचन का पूर्ण प्रतिवेदन पेश करने का निर्णय लिया है। अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने आज भ्रष्टाचार नियंत्रण संबंधी 5 वर्षीय रणनीतिक योजना को सार्वजनिक किया है। भ्रष्टाचार विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज आयोग में आयोजित कार्यक्रम में उपप्रधान तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने आयोग की 5 वर्षीय रणनीतिक योजना को सार्वजनिक किया। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 से 2080-81 तक की रणनीतिक योजना ने भ्रष्टाचार को विभिन्न संस्थागत क्षमता विकास एवं प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमों के जरिए नियंत्रण करने का लक्ष्य लिया है। इसकी जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे ने दी है। इसी तरह भ्रष्टाचार निगरानी प्रणाली का विकास कर अनुसंधान एवं निरंतर निगरानी करने, भ्रष्टाचार संबंधी सभी सूचनाओं को व्यवस्थित करने तथा इंटेलिजेंस संयंत्र को सुदृढ़ करने आदि विभिन्न 12 नीतियों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज काठमांडू में अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग और प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय द्वारा साझा रूप में आयोजित कार्यक्रम में उपप्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने सभी से सरकार द्वारा आगे बढ़ाए गए भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता के अभियान में सहभागी होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, चाहे ऊंचे से ऊंचे पद का व्यक्ति ही क्यों न हो, भ्रष्टाचार करने वाले किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मौके पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे ने कहा कि देश के संहिता में आने के बाद आयोग में सबसे अधिक स्थानीय तहों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज हुई हैं। उन्होंने बताया कि चालू आर्थिक वर्ष में अब तक भ्रष्टाचार के मामले में 120 मुकदमे अदालत में दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और सद्भाव बहाल करने के लिए श्रष्टाओं की कलम और सशक्त होनी चाहिए। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में योगदान करने वाले श्रष्टाओं को दिए जाने वाले पुरस्कार प्रदान करने के लिए आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में चेतनाशील समुदाय की हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यक्रम में प्रतिष्ठान द्वारा हर 4 साल दिए जाने वाले 4 लाख की राशि सहित पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार से वांग्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी को प्रदान किया गया। हर 2 साल पर दिए जाने वाले 1 लाख राशि सहित नेपाल प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र दर्शन पुरस्कार प्राध्यापक डॉ त्रिरत्न नारायण मानंधर को और नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्राध्यापक डॉ टंक प्रसाद न्योपाने को प्रदान किया गया। इसी तरह नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार से अमर तामहांग, अयोध्यानाथ चौधरी, अमृत योंजन तामांग और अशोक थारू सहित 4 श्रष्टाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2076 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले 3 श्रष्टाओं समेत 5 श्रष्टाओं को नगद और सम्मान पत्रों से सम्मानित किया गया। वहीं नेपाल प्रज्ञा पुरस्कार और राष्ट्रीय कविता महोत्सव पुरस्कार से 14 श्रष्टाओं को सम्मानित किया गया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बांके के कोहलपुर में जारी आंदोलन 6 सूत्रीय सहमति के साथ समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख जिला अधिकारी कुमार बहादुर खड़का की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार समक्ष विभिन्न 6 सूत्रीय सहमति करते हुए आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। स्थानीय विद्यालय में कक्षा 7 में अध्ययनरत छात्रा प्रकृति चंद के ट्रक के टक्कर से घायल हुई थी। घटना के बाद कोहलपुर में आंदोलन शुरू हुआ था। आज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली वार्ता में 6 सूत्रीय सहमति की गई थी। सहमति अनुसार छात्रा चंद की शिक्षा दीक्षा सहित जीवन यापन के लिए उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्रालय में अनुरोध किया जाएगा। सहमति में यह भी तय हुआ है कि आंदोलन में हुए घायलों का पूर्ण उपचार सरकार द्वारा ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ आज निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने राष्ट्रसभा के रिक्त सदस्य पदों के चुनाव के संदर्भ में परामर्श किया है। प्रधानमंत्री निवास बालोटार में आज ही मुलाकात में आने वाले मार्ग 9 को राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए उपयुक्त बताया गया है। ये बात प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने बताई। ज्ञात हो कि निर्वाचन आयोग के परामर्श पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय सभा चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की कानूनी व्यवस्था है। स्थानीय तहों में कार्यरत कर्मचारियों का निश्चित आधार और मापदंड निर्धारित कर प्रदेश के अन्य स्थानीय तह के समान ओहदे पर तबादला किए जा सकने की व्यवस्था पर सांसदों के बीच सहमति बनी है। आज प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में निजामती कर्मचारी संबंधी विधेयक के ऊपर विचार विमर्श में संबंधी प्रवेश द्वार बनाए जाने वाले कानून और मापदंड अनुसार प्रदेश के अन्य स्थानीय तहों के समान ओहदे पर कर्मचारी का तबादला किए जा सकने के प्रावधान पर सांसदों ने सहमति जताई है। बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदेश त्रिपाठी ने कहा कि कानून दीर्घकाल के लिए बनाया जाता है, इसलिए सत्ता पक्ष को सिर्फ अपने हिसाब से और प्रतिपक्ष को सिर्फ रोड़ा अटकाने के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। सरोकार वालों ने कहा कि महिला हिंसा न्यूनीकरण के लिए महिला को खुद भी सचेत होना होगा। आज बियॉन्ड बेजिंग कमेटी नेपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना आयोग की आयुक्त यशोदा तिमसिना ने कहा कि डिजिटल मीडिया और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर होने वाली विभिन्न हिंसाओं और विभेद का अंत करने के लिए महिलाओं को स्वयं जागरूक होना होगा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सिरहा की गोल बाजार नगरपालिका 4 स्थित चौक पर आज एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पूर्व से पश्चिम की तरफ आती हुई मोटरसाइकिल और विपरीत दिशा से जा रहे एम्बुलेंस की हुई टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार सिरहा नगर पालिका 12 सारस्वर के 35 वर्षीय विष्णु महरा और 24 वर्षीय राकेश मंडल की हुई मौत की जानकारी पुलिस ने दी है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डॉ शशांक कोइराला ने कहा कि देश की आर्थिक समृद्धि के लिए राजनीतिक सहमति अपरिहार्य है। आज विराटनगर विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत में डॉ कोइराला ने कहा कि देश के हित के लिए कांग्रेस सरकार के साथ सहकार्य करने को तैयार है। ये बताते हुए कि कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संविधान के सफल क्रियान्वयन के लिए भी सहमति का विकल्प नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी के फटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड पर उड़े टोही विमान को अब तक कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला है। यह हादसा व्हाइट आइलैंड में हुआ है। इस द्वीप में ज्वालामुखी के फटने से पहले उसके मुहाने के किनारे पर्यटकों को घूमते देखा गया था। अनुमान है कि द्वीप पर 50 लोग मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि 23 लोगों को बचाया गया है, जिनमें कई गंभीर रूप से जल गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी जिंदा हो सकता था उसे बचाया जा चुका है। बचावकर्मी द्वीप पर जाकर खोजी अभियान चलाने में असमर्थ हैं, क्योंकि दोबारा विस्फोट की आशंका है और अंधेरा भी हो चुका है। ताजा जानकारी में पुलिस ने कहना है कि जितनी जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि द्वीप पर कोई जिंदा होगा। व्हाइट आइलैंड न्यूजीलैंड के उत्तरी सिरे पर स्थित द्वीप है, जिसे वाकारी के नाम से भी जाना जाता है। यहां देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। इसके बावजूद भी ये निजी द्वीप पर्यटकों की खास जगह है, जिसको दिखाने के लिए खास उड़ानें भी होती हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.8 और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। स्थायी कमिटी की बैठक मार्च 29 को बुलाने का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सचिवालय की बैठक ने किया निर्णय। अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने भ्रष्टाचार नियंत्रण संबंधी अपनी 5 वर्षीय रणनीतिक योजना को किया सार्वजनिक और न्यूजीलैंड में एक ज्वालामुखी के फटने से 5 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।